प्रदाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो जैसे हम मंगलाचरण की चर्चा कर रहे थे और मंगलाचरण के हर एक श्लोक का शब्द भेद करके अर्थ निकाल रहे थे, ठीक उसी प्रकार से अभी हमारे जितने मुख्य दैनिक प्रार्थनाएं हैं उनको भी हमें इसी प्रकार से समझ लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम कौन सी प्रार्थना गाते हैं दिन में? श्री गुरुवाष्टक। किन्होंने लिखा है ये गुरुवाष्टक? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो कितने पंक्तियां हैं इसमें? आठ, इसलिए ये अष्टक है। अष्टक मतलब आठ। तो गुरु अष्टक क्योंकि ये गुरु की गुणगान करता है, इसलिए गुरुवाष्टक। और विश्वनाथ चक्रवर्ती बताते हैं कि बड़े ध्यान से और ऊंचे स्वर से जो इस सुंदर गुरुवाष्टक को ब्रह्म मुहूर्त के समय गाता है उसे साक्षात भगवान कृष्ण की सेवा प्राप्त हो जाती है। तो सबसे पहला श्लोक या पहला मंत्र कौन सा है गुरुवाष्टक का? दावा नलनी ढलो का प्रणाय कारुण्य घना घनत्वम तत्स्य कल्याण नानवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो हर एक पंक्ति के अंत में क्या है? वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो क्या मतलब है इसका, कौन समझाएंगे? मैं उन गुरु के चरणों को, चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, मैं वंदना करता हूँ। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, ऐसे श्री गुरु के चरणारविंद की मैं वंदना करता हूँ। तो ये हर एक श्लोक में है। तो सबसे पहले श्लोक कौन समझाएंगे? अभी शब्द भेद करके सब लोगों को कंठस्थ है ना संसार दावा प्रार्थना, किनको नहीं है हाथ ऊपर कीजिए। ठीक है, तो कौन बताएंगे? हाँ, शब्द भेद करके थोड़ा जोर से, और एक माइक है, हाँ माइक ले लो। तो इसी प्रकार से आप सब ध्यान से सुनिए और आपके सामने भी किताब रखी है, हर एक शब्द को आप फॉलो कीजिए। अनल, अनल क्या है? भूमि राप नल वायु, अग्नि, अनल। तो भूमि राप वायु अनल। तो संसार दावानल है, मतलब ये संसार क्या है? संसार की तुलना किससे की गई है? एक जंगल से, जिस जंगल में आग लगी हुई है। संसार दावानल, हाँ फिर दावानल लीढ़ लोक का मतलब क्या? हाँ ग्रसित, हाँ ग्रस्त है वो दावानल की पीड़ा में। दावानल में मतलब क्या होता है, जब जंगल में अग्नि होती है तो जंगल के प्राणियों को वो पीड़ाग्रस्त होते हैं ना, गर्मी है उनको भागना पड़ता है, सब जल रहा है, जलन होता है, सब पीड़ाग्रस्त होते हैं। इसी प्रकार से संसार दावानल नीढ़ लोक, तो जितने भी लोग यहाँ निवास करते हैं वो इस संसार में दावानल से वो पीड़ित है, कि कष्ट से पीड़ित है। तो जितने भी यहाँ रहने वाले हैं वो उनकी ये दशा है। फिर से पहला लाइन समझाइए। पीड़ित है, कारुण्य क्या है, करुणा। तो उनको अगर तैरना है, तैर के ले जाना है, तारना है उनको, तो कृपा चाहिए। किस प्रकार की कृपा? हाँ आगे पढ़िए। नहीं, त्वम यह पद यहाँ आप नहीं है शब्द, यह स्वयं कहते हैं त्व, गुरुत्व। इसका गुरुत्व आप जानते हैं कि क्या है? गुरुत्व, उसका गुण, गुण होना, महत्व। त्व त्व आता है ना इसमें, त्व का क्या मतलब? महत्व है। विद्वत्व, तो ऐसे घना घनत्व, घनात्वम। तो ये जो गुण है घना घनत्व, घना घना का क्या है? बादल। जो घना बादल है बरसात में, उस बादल का गुण है घना घनत्वम उस सदगुरु में। क्यों? क्योंकि जब दावानल होता है, जंगल में अग्नि होती है, तो ऐसे अग्नि को बुझाने के लिए क्या एक पानी बाल्टी काफी है? 10 पानी बाल्टी काफी है? क्या चाहिए उसके लिए? बारिश चाहिए। उसके लिए बहुत ज्यादा वर्षा चाहिए, जो कि घने बादलों से आता है। तो ये जो घने बादलों का गुण है घना घनत्वम, इस गुण से जो कि वर्षा बरसाती है, गुरु के भी ऐसे गुण होते हैं करुणा बरसाने के लिए। तो बादलों की तुलना की गई है किससे? गुरु से। वर्षा करुणा और संसार दावानल से। आगे बढ़िए। तो बादल जो होता है वो बरसात बरसाता है। बादल को कहाँ से मिलता है पानी? समुद्र से। तो समुद्र से, सूरज की रोशनी से पानी ऊपर बादल में चले जाता है, फिर बादल आगे जाके बरसाता है। तो अभी इसकी तुलना कीजिए। ये अच्छा, ये रहा, ये है बोर्ड। तो गुरु के लक्षण होते हैं वो घना घनत्व के गुण होते हैं उनके अंदर, एक घने बादल के गुण होते हैं। घने बादल का गुण होता है कि वो वर्षा बरसाता है, उसी प्रकार से गुरु करुणा बरसाते हैं। तो ये है घना घनत्वम, घना घनत्व ये गुण गुरु के अंदर होता है। और ऐसे गुरु क्या है, गुण अर्णवस्य, अर्णव वो सद्गुणों के समुद्र हैं। अच्छा, कोई इसका पूरा अनुवाद पढ़िए हिंदी में माइक पे। प्राप्तस्य मतलब जो प्राप्त करते हैं, कल्याण, जो अच्छे कल्याण के गुण हैं। प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य, जो ऑस्पिशियस, जो मंगलमय गुण हैं, इनके सागर है। पढ़ो पूरा अनुवाद पढ़ो तो क्लियर हो जाएगा।
श्री गुरुदेव आध्यात्मिक गुरु रूपा सिंधु से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। जिस प्रकार एक मेघ वन में लगे हुए दावाग्नि पर जल की वर्षा करने से करके उसे शांत कर देता है, उसी प्रकार श्री गुरुदेव सांसारिक जीवन की प्रज्वलित अग्नि को शांत करके भौतिक दुखों से पंडित पीड़ित जगत का उद्धार करते हैं। शुभ गुरु के सागर ऐसे गुरुदेव के चरण कमलों में मैं सादर वंदन करता हूँ।
शुभ गुणों के सागर, कल्याण गुण अर्णव। साथ साथ ये भी है कि ये बादल कहां से कृपा प्राप्त करते हैं, समुद्र से। तो यहां फिर से अनुवाद पढ़ो कि कहां से प्राप्त करते हैं सद्गुरु। हाँ, कृपा सिंधु से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। तो गुरु क्या है, बादल है, और वो बादल कृपा कहां से प्राप्त कर रहे हैं, समुद्र से, कृपा सिंधु से। तो ये कृपा किसकी है, मूल रूप से भगवान की है। तो गुरु क्या कर रहे हैं, भगवान की कृपा को यहां संसार में बांट रहे हैं, वर्षा कर रहे हैं, भगवान की कृपा की वर्षा वो कर रहे हैं। भगवान की कृपा को प्राप्त किए हैं कृपा सिंधु से, और ऐसे कृपा सिंधु से कृपा प्राप्त करके वो बादल रूपी बन गए हैं, घना घनत्व ये गुण आ गया उनके अंदर, जिससे कि अभी वो कृपा प्राप्त करके बरसा रहे हैं। और बरसा के क्या होता है, यहां जो दावानल, जो संसार के पीड़ित लोग हैं, उनको त्राणाय, त्राणाय मतलब राहत देते हैं, उनको तारते हैं। अभी फिर से समझाओ।
संसार धावा ननलीड लोका, जो लोक है जो संसार धावा नल से पीड़ित है संसार के, उनको कृपा के बादल के समान धारने वाले हैं। वो जो कृपा कृपा है वो समुद्र से जो उन्होंने प्राप्त किया है, मंगल मंगलमय गुणों के जो सागर है वो उससे उन्होंने प्राप्त किया है, ऐसे गुरु की चरणों को मैं वंदना करता हूँ।
नहीं, वो खुद मंगल गुणों के सागर हैं गुरु, लेकिन उन्होंने कृपा प्राप्त की है कृपा सिंधु से। ठीक है, दोनों है। हाँ, दोनों को संबोधित हो रहा है, यह अनुवाद में इस प्रकार से किया गया है कि वो स्वयं कल्याण गुण अर्णव है, शुभ गुणों के सागर हैं, साथ साथ प्राप्तस्य कल्याण, ये प्राप्त, ये शुभ, ये कल्याण की जो कृपा है, ये कृपा सिंधु से प्राप्त करते हैं। कल्याण गुण अर्णवस्य, तो दोनों इसका मतलब हो जाता है। तो इसे गुरु तत्व हम समझ सकते हैं। तो कृपा किसकी है? भगवान की, जो गुरु परंपरा से चलती आ रही है। तो वही कृपा, जिस प्रकार से ऊर्जा घर से बिजली चलती है और हम तक पहुंचती है, जगह जगह में छोटे छोटे ऊर्जा घर होते हैं जिनको सबस्टेशन कहते हैं, है ना? लेकिन मूल ऊर्जा घर तो कहीं बहुत दूर रहता है। तो उस प्रकार से भगवान मूल ऊर्जा घर है और गुरु परंपरा में जितने भी गुरुजन हुए हैं वो सब बीच वाले ऊर्जा, छोटे छोटे ऊर्जा घर हैं और वो इस कृपा को देते जा रहे हैं और अभी हम तक वो कृपा पहुंच रही है। तो यहां गुरु के किस गुण का वर्णन है? कृपा, कृपा के गुण का, कि वो कृपा बरसाते हैं और इससे संसार के पीड़ित लोगों को तारते हैं। तो फिर से एक बार ये श्लोक हम उच्चारण करते हैं। संसार दावा नल नीढ लोक त्राणाय कारुण्य घना घनत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरुः श्री चरणारविंदम। ठीक है, सबको स्पष्ट है इस श्लोक का अर्थ क्या है? हाँ, कोई संशय? हाँ, गुरु को, ऐसे गुरु को हम वंदना करते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो गुरुन है, अनेक वचन गुरुन है। जैसे कौन से श्लोक में आता है ये गुरुन? मंगलाचरण के, वंदे हम श्री गुरु श्री गुरुन, वंदे हम श्री गुरु श्री गुरुन। पहले हमारे गुरु श्री गुरु कि हम वंदना करते हैं हमारे गुरु को, वंदे अहम श्री गुरु कि गुरु को, साथ साथ श्री गुरुन, फिर साथ समस्त गुरुजनों को हम वंदना अर्पण करते हैं। ठीक है, तो ये है गुरु हो। कई बार लोग गुरु कहते हैं, जब यो वंदे गुरु श्री, वंदे गुरु श्री नहीं है, गुरु हो श्री, वंदे गुरु हो श्री चरणारविंदम। ठीक है, सब लोग मतलब समझ गए ना? अच्छा, दूसरा श्लोक सब लोग साथ में बोलेंगे। महाप्रभो कीर्तन नृत्य गीत वादित्रमाद्यं मनसोरसेन रोमांचकंपाश्रुतरंग भाजो वंदे गुरुः श्री चरणारविंदम। अच्छा, तो इसका मतलब कौन समझाएंगे शब्द भेद करके? हाँ, माइक दो, माइक किधर है? रसेना
भक्ति के रस,
फिर से समझाओ।
महाप्रभो
हाँ
महाप्रभु का जो संकीर्तन आंदोलन है
हाँ
उसमें गुरुदेव कीर्तन नृत्य और जो गायन है
और
गीत
वाद्य।
उसे ये देखकर गुरुदेव बहुत ही प्रसन्न हुए।
उनका मन माद्यत मनसः, उनका मन बहुत प्रसन्न होता है। रसेन, क्योंकि वो ऐसे भक्ति रस का आस्वादन कर रहे हैं, इसीलिए इसीलिए क्या रसेन, हाँ इसलिए उनके रोमांच आदि होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो इस भक्ति रस का आस्वादन कर रहे होते हैं। रसेन तो ऐसे रस से, हाँ तो रसेन क्या क्या होता है? रसेन रोम अंच, रोम खड़े, रोम रोंगटे खड़े हो जाते हैं और कंपित होता है, रोमांच कंप। फिर अश्रु तरंग, कंपाश्रु तरंग भाजो। अश्रु तरंग मतलब क्या है? तरंग धारा, अश्रु धारा बहती है। फिर भाजह, भाजह जो अनुभव करते हैं, जो ऐसे दिव्य रस का अनुभव करते हैं और फिर ऐसे लक्षण प्रकट होते हैं, तो ऐसे श्री गुरु के चरणों चरण वंदन चरण अरविंद में मैं वंदना करता हूं। ठीक है, हाँ तो और कोई समझाइए, अभी इसका पूरा अनुवाद पढ़िए हिंदी में।
श्री भगवान के दिव्य नाम का कीर्तन करते हुए
माइक माइक पे
पवित्र नाम के जप आनंदमय होकर नृत्य मैली गायन और संगीत के साजों के बजने से सदगुरु श्री चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन आंदोलन से सदैव आनंदित रहते हैं। क्योंकि वह अपने मन में शुद्ध भक्ति का प्रसादन कर रहे हैं, कभी उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कभी रोमांचित होकर उनका शरीर कपकपाने लगता है और आंखों से अश्रु धारा बहने लगती है। मैं ऐसे सदगुरु के चरणारविंद में अपना सादर वंदन।
ठीक है, तो और कोई समझाइए श्लोक को। और कौन समझाएंगे शब्द भेद करके?
महाप्रभु
पहले एक एक लाइन बोल के फिर उसको समझाइए।
महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता
वादित्र, क्योंकि वो एक कनेक्टेड है ना। नहीं नहीं केवल महाप्रभो कीर्तन नृत्य गीत वादित्र इतना समझाइए। महाप्रभु के कीर्तन के, महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन है ना, आंदोलन में हाँ
मन को प्रसन्न करने वाले हैं।
किन के मन को? गुरु, वंदे गुरु हो श्री चरणारविंद में ऐसे सद्गुरु के चरणारविंद में सादर वंदना करता हूं, जो कि चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में जो कीर्तन होता है, नृत्य होता है, गीत होता है, वाद्य बजता है, उससे प्रसन्न हो जाते हैं। माद्यत मनसह है ना, तो गुरु प्रसन्न होते हैं ये सब संकीर्तन आंदोलन के अलग अलग कार्यों से। क्यों प्रसन्न होते हैं? प्रसन्न होके फिर क्या होता है उनके इसका लक्षण क्या होता है? उसके पहले
रसे।
रसेन मतलब ऐसे वो भक्ति रस का आस्वादन कर रहे होते हैं, और ऐसे भक्त का, ऐसे भक्ति रस का आस्वादन करने के फलस्वरूप फिर ये लक्षण प्रकट होने लगते हैं। क्या क्या लक्षण है वो? रोमांच, फिर कंप, तीसरे अश्रु, अश्रु तरंग, अश्रु धारा, भाज मतलब अनुभव करना। तो पहले पहले श्लोक में यहां आप लिख लीजिए, सार सार लिख लीजिए यहां। पहले श्लोक का सार क्या है? हाँ बताइए। श्री गुरु की तुलना किससे की गई है? कौन से गुण से? श्री गुरु कृपा, भगवत कृपा के माध्यम, सही है ना? बादल, और नीचे लिखो भगवत कृपा के माध्यम। सही है। और साथ साथ इसके लक्षण क्या है? कृपा बरसाते हैं बादल की तरह, फिर पीड़ित लोगों को तारते हैं, संसार के पीड़ित लोगों को तारते हैं। तो प्रिय गोविंद प्रभु, इसका ये सार, हर एक श्लोक का मेन पॉइंट्स आप अंग्रेजी में लिखो, फिर उसको करके आगे से नोट्स में बनाएंगे। ठीक है, अभी रहने दो, फिर बाद में नोट्स बनाएंगे, उस समय करेंगे। ठीक है, अभी रहने दो, नहीं तो आगे ऐसी चर्चा करेंगे। हाँ, जो अभी सार अब समझ रहे हैं ना, गुरु के हर एक गुण के बारे में हर एक श्लोक में चर्चा है, तो हर एक श्लोक का क्या फोकस है, क्या पॉइंट है, वो चर्चा करना है। ठीक है, तो दूसरा श्लोक हो गया, अब तीसरा श्लोक आइए पढ़ते हैं। श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तन्मंदिर मार्जनादो युक्तस्य भक्तांश्च नियुञ्जतोपि वंदे गुरुः श्री चरणारविंदम। तो कौन समझाएंगे इसका मतलब क्या है? हाँ, मूर्ति है भगवान की, कौन से शब्द शब्द भेद करो, इधर इधर माइक का दे देना। श्री विग्रह आराधना नित्य, नित्य श्री विग्रह आराधना नित्य मतलब डेली, जो हर रोज भगवान के श्री विग्रह की सेवा में युक्त रहते हैं, हर समय, नित्य, नित्य मतलब सदैव, हर दिन, सदैव मतलब हर क्षण तो नहीं, हर दिन नित्य रूप से।
श्रृंगार,
हाँ,
उस भगवान को मंदिर में मार्जन और दो साफ सफाई युक्तस्य
आदव
इतर
इतर इत्यादि, मतलब मंदिर, तन तन मंदिर, तत् मतलब क्या? देखो, उनका उनके मंदिर का मतलब भगवान के मंदिर का मार्जन आदि करते हैं। मतलब मंदिर में केवल मार्जन नहीं, और भी कोई कार्य होता है ना, सब आदो। हाँ फिर
युक्तस्य
हाँ
युक्त है
हाँ और
युक्तस्य भक्तान और उनके भक्तों को भी च और नियुंजतः उनको भी युक्त करते हैं
हाँ
अपि और वंदे मैं उस गुरु को प्रणाम करता हूँ वंदन करता हूँ गुरु उस गुरु को श्री जो
ऐश्वर्यशाली
ऐश्वर्यशाली है
शुभ।
चरणारविंदम उनके चरण कमल।
अच्छा, अभी पूरा इसका एक बार बिना देखे अनुवाद बताओ, ऐसे रफ अपनी भाषा में शब्द भेद करके। हाँ
मैं उस गुरु को प्रणाम करता हूँ जो भगवान की विग्रह आराधना में युक्त है
कब कब कब? हफ्ते में एक बार, नित्य। श्री विग्रह आराधना नित्य,
हर समय भगवान की श्री विग्रह की आराधना में
नित्य मतलब हर रोज प्रतिदिन।
प्रतिदिन नित्य है नित्य युक्त है और श्रृंगार भगवान के श्रृंगार
हाँ, किस प्रकार से श्री विग्रह आराधना नित्य, तो भगवान की श्री मूर्ति की सेवा में नित्य वो युक्त है, युक्तस्य वो युक्त है, लेकिन किस प्रकार से युक्त है?
श्रृंगार
केवल श्रृंगार के, उसके पहले कौन सा शब्द है? नाना।
नाना अलग अलग
हाँ, तरह से।
अलग अलग तरह से जैसे श्रृंगार
हाँ
तत् भगवान के श्रृंगार मंदिर मर्जन आदो मंदिर के साफ सफाई इत्यादि
हाँ,
आदो
तो वो
इत्यादि
जब विग्रह की सेवा करते हैं कैसे करते हैं? नाना श्रृंगार, तरह
अलग
तरह से सुंदर वस्त्र आभूषण आदि अर्पण करते हैं श्री मूर्ति को, और साथ साथ क्या करते हैं?
मंदिर मार्जन करते हैं
उसके पहले क्या शब्द है? नाना
तत्
श्रृंगार तत्।
मंदिर
हाँ, तत् तत्
मीन्स
मंदिर, तन मंदिर। जब
भगवान
तत् संध्या में फिर तत् तन हो जाता है, लेकिन भगवान का मंदिर का क्या करते हैं?
मार्जन
मार्जन
आदि और
आदि, मतलब मार्जन करना, मंदिर को भी सजाना। हाँ, ये सब सेवा में लगे रहते हैं। तद मंदिर मार्जन आदो।
युक्तस्य वो खुद युक्त है
हाँ
युक्तस्य भक्ता उनके भक्तों को भी युक्तस्य
हाँ
भक्ता सनयुंजतो तो भी
सच नियुंजतोपि,
और अर्पण
नियुंजतः
उनको भी
युक्त करते
युक्त
हैं,
करते हैं
तो स्वयं भी करते हैं और अपने शिष्यों को भी
युक्त करते हैं
युक्त करते हैं। किस कार्य में?
श्रृंगार
श्री विग्रह की सेवा में और भगवान के मंदिर की सेवा में। श्री विग्रह से संबंधित मंदिर है, मंदिर में तो श्री विग्रह होते हैं, तो ऐसे श्री गुरु के चरण कमलों में मैं सादर वंदना करता हूँ, जो कि नित्य रूप से भगवान के श्री विग्रह की सेवा में युक्त हैं, और ये सेवा वो नाना प्रकार से भगवान के विग्रह की श्रृंगार करके करते हैं, भगवान के मंदिर की मार्जन आदि से करते हैं, और इस सेवा में अपने शिष्यों को भी युक्त करते हैं। साधारण भाषा में, अपनी भाषा में हमें बोलना चाहिए, भले वो डिट्टो इधर से नहीं हो, लेकिन हमें समझ के उसको समझाना चाहिए। ठीक है, अभी और कोई भक्त अपनी भाषा में समझाइए इस श्लोक का अर्थ। श्री विग्रह आराधन नित्य नान, बिना देखे हुए अभी बताओ।
भगवान की तो श्री विग्रह है।
हाँ
श्री विग्रह आराधना।
हाँ नाना श्रृंगार,
नाना श्रृंगार
मतलब
अलग अलग प्रकार के जो
श्रृंगार करते हैं
और दत्त मंदिर के मंदिर का
मार्जनादो
मार्जन और मंदिर का मार्जन और आदि अनेक सेवाएं।
हाँ
और युक्तस्य
कौन युक्त रहते हैं?
गुरु।
हाँ
युक्तस्य भक्तांश और भक्तों को भी
हाँ नियुक्त करते हैं, मतलब उनको भी युक्त कर देते, उनको भी सेवा मिल जाते हैं। तो हाँ बहुत अच्छा। तो देखिए हर एक श्लोक में अलग अलग कार्य और गुणों के वर्णन आते हैं, ठीक है। तो बाद में जब ये नोट तैयार हो जाएंगे तो उसको लिख के फिर उसको अच्छी तरह से हिंदी में अनुवाद करके सब भक्तों को दे सकते हैं, ठीक है। हाँ आज टाइम क्या हुआ? 2:45 हुआ, ठीक है। अभी यही कथा को क्लास को विराम देते हैं, कल फिर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन आप इन श्लोकों को पढ़िए जो वैष्णव गीत किताब में है, इसको आप पढ़िए, ठीक है, ताकि समझने के लिए ये अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और कल जब मंगल आरती में गाएंगे तो ध्यान से अभी सोचिए कि इसका अर्थ क्या है, हम क्या बोल रहे हैं। हम रोज गाते हैं संसार दावा नलनी ढलो कर, लेकिन मन में उसका मतलब नहीं रहता है। हम यूं ही बोल देते हैं कि कंठस्थ है तो सुबह से वो हम बोल लेते हैं बस, लेकिन क्या मतलब है इसका, हम इसके ऊपर ध्यान नहीं करते हैं, है ना। तो इनको सीख लेना चाहिए अच्छी तरह से, हमारे दैनिक ये प्रार्थनाएं हैं तो इनको अच्छी तरह से मालूम कर लेना चाहिए, ठीक है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे।